काव्य जगत की रचना करने वाली कल्पना इसी को कहते हैं। किसी भावोद्रेक द्वारा परिचालित अंतर्वृत्ति जब उस भाव के पोषक स्वरूप गढ़कर या गांठ छाटकर सामने रखने लगती है, तब हम उसे सच्ची कवि कल्पना कह सकते हैं। यूं ही सिर पच्ची करके बिना किसी भाव में मग्न हुए कुछ अनोखे रूप खड़े करना या कुछ को कुछ कहने लगना या तो बावलापन है या दिमागी कसरत, सच्चे कवि की कल्पना नहीं। वास्तव के अतिरिक्त या वास्तव के स्थान पर जो रूप सामने लाए गए हों उनके संबंध में यह देखना चाहिए कि वे किस भाव की उमंग में उस भाव को संभालने वाले या बढ़ाने वाले होकर आ खड़े हुए हैं, या यूं ही तमाशा देखने के लिए, कुतूहल उत्पन्न करने के लिए जबरदस्ती पकड़ कर लाए गए हैं। यदि ऐसे रूपों की तह में उनके प्रवर्तक या प्रेषक भाव का पता लग जाए तो समझिए कि कवि के हृदय का पता लग गया और वे रूप हृदय प्रेरित हुए। अंग्रेज कवि कॉलरिज ने अपने कवि कल्पना पर अच्छा विवेचन किया है। अपनी एक कविता में ऐसे रूपावरण को आनंद स्वरूप आत्मा से निकला हुआ कहा है, जिसके प्रभाव से जीवन में रोचकता रहती है। जब तक यह रूपावरण जीवन में साथ लगा चलता है, तब तक दुख की परिस्थिति में भी आनंद स्वप्न नहीं टूटता, पर धीरे धीरे यह दिव्य आवरण हट जाता है और मन गिरने लगता है। भावोद्रेक और कल्पना में इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक काव्य मीमांसक ने दोनों को एक ही कहना ठीक समझकर कह दिया है, कल्पना आनंद है। सच्चे कवियों की कल्पना की बात जाने दीजिए। साधारण व्यवहार में भी लोग जोश में आकर कल्पना का जो व्यवहार बराबर किया करते हैं, वह भी किसी पहाड़ को शिशु और पांडव कहने वाले कवियों के व्यवहार से कहीं उचित होता है। किसी निष्ठुर कर्म करने वाले को यदि कोई हत्यारा कह देता है तो वह सच्ची कल्पना का उपयोग करता है, क्योंकि विरक्ति या घृणा के अतिरेक से प्रेरित होकर ही उसकी अंतर्वृत्ति हत्यारे का रूप सामने करती है, जिसे भाव की मात्रा के अनुरूप आलंबन खड़ा हो जाता है। हत्यारा शब्द का लाक्षणिक प्रयोग ही विरक्ति की अधिकता का व्यंजक है। उसके स्थान पर यदि कोई उसे बकरा कहे तो या तो किसी भाव की व्यंजना न होगी या किसी ऐसे भाव की होगी जो प्रस्तुत विषय के मेल में नहीं। कहलाने वाला कोई भाव अवश्य चाहिए और उस भाव को प्रस्तुत वस्तु के अनुरूप होना चाहिए। भारी मूर्ख को लोग जो गधा कहते हैं, वह इसलिए कि मूर्ख कहने से उनका जी नहीं भरता, उनके हृदय में उपहास अथवा तिरस्कार का जो भाव रहता है उसकी व्यंजना नहीं होती। कहने की आवश्यकता नहीं कि अलंकार विधान में उपयुक्त उपमान लाने से कल्पना ही काम करती है। जहाँ वस्तु गुण या क्रिया के पृथक पृथक साम्य पर ही कवि की दृष्टि रहती है, वहाँ वह उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि का सहारा लेता है, और जहाँ व्यापार समष्टि या पूर्ण प्रसंग का साम्य अपेक्षित होता है, वहाँ दृष्टांत अर्थांतर न्यास और अन्योक्ति का उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है, प्रकट है कि वस्तु प्रकट के मेल में जो अप्रस्तुत रखा जाए, चाहे वह वस्तु गुण या क्रिया हो अथवा व्यापार समष्टि, वह प्राकृतिक और चित्ताकर्षक हो तथा उसी प्रकार का भाव जगाने वाला हो, इस प्रकार का प्रस्तुत व्यापार समष्टि के समन्वय में कवि की हृदयता का जिस पूर्णता के साथ हमें दर्शन होता है, उस पूर्णता के साथ वस्तु क्रिया आदि के पृथक पृथक समन्वय में नहीं। इसी से सुंदर अन्योक्तियाँ इतनी मर्म स्पर्शनी होती हैं। चुना हुआ अप्रस्तुत व्यापार जितना ही प्राकृतिक होगा, जितना ही अधिक मनुष्य जाति के आदिम जीवन में सुलभ दृश्यों के अंतर्गत होगा, उतना ही रमणीय और मनोरंजनकारी होगा। सूरदास जी ने कई स्थलों पर अपनी कल्पना के बल से प्रस्तुत प्रसंग के मेल में अत्यंत मनोरम व्यापार समष्टि की योजना की है। कोई गोपिका या राधा स्वप्न में कृष्ण के दर्शनों का सुख प्राप्त कर रही थी कि उसकी नीर उचट गई। इस व्यापार के मेल में कैसा प्रकृति व्यापी और गूढ़ व्यापार सूर ने रखा है, देखिए। हमको सपनेहु में सोच, जा दिनते बिछरे नंदनंदन ता दिनते यह पोच, मनो गोपाल आए मेरे घर हंसी करी भुजा गही, कहा करो बैरन भई निदिया निमिष न और रही, ज्यो चकई प्रतिबिंब देखी कई आनंद पिय जान, सुर पवन मिस निठुर विधाता चपल कियो जल आन। स्वप्न में अपने ही मानस में किसी का रूप देखने और जल में अपना ही प्रतिबिंब देखने का कैसा गूढ़ और सुंदर साम्य है। इसके उपरांत पवन द्वारा प्रशांत जल के हिल जाने से छाया का मिट जाना और भूतव्यापी व्यापार स्वप्नभंग के मेल में लाया गया है। इसी प्रकार प्राकृतिक चित्रों द्वारा सूर्य ने कई जगह पूरे प्रसंग की वंदना की है। जैसे गोपियां मथुरा से कुछ ही दूर पर पड़े विरह से तड़फड़ा रही हैं, पर कृष्ण राज सुख के आनंद में फूले नहीं समा रहे हैं, यह बात वे इस चित्र द्वारा कहते हैं। सागर कूल मीन तरफत है, हुल से होत जल पीन। जैसा ऊपर कहा गया है, जिसे निर्माण करने वाली सृष्टि खड़ी करने वाली कल्पना कहते हैं, उसकी पूर्णता किसी एक प्रस्तुत वस्तु के लिए कोई दूसरी अप्रस्तुत वस्तु, जो कि प्रायः कवि परंपरा में प्रसिद्ध हुआ करती है, रख देने से उतनी नहीं दिखाई पड़ती जितनी किसी एक पूर्ण प्रसंग के मेल का कोई दूसरा प्रसंग, जिसमें अनेक प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों की नवीन योजना रहती है, रखने में देखी जाती है। सूलदास जी ने कल्पना की इस पूर्णता का परिचय जगह जगह दिया है। इसका अनुमान ऊपर उद्धृत पदों से हो सकता है। कबीर, जायसी आदि कुछ रहस्यवादी कवियों ने उस जीवन का मार्मिक स्वरूप तथा परोक्ष जगत की कुछ धुंधली सी झलक दिखाने के लिए इस अन्योक्ति की पद्धति का अवलंबन किया है। जैसे हंसा प्यारे सरबर तजी कह जाए, जे भी सरवर बीच मोती चुनते बहुविध केल कराए, सुकताल पुरैनी जल छोड़े कमल गयो कुभिलाए, कह कबीर जो अब की बिछुरे बहुरी मिले कब आए। रहस्यवादी कवियों के समान सूर्य की कल्पना भी कभी कभी इस लोक का अतिक्रमण करके आदर्श लोक की ओर संकेत करने लगती है। जैसे चकईरी चली चरण सरोवर जहां न प्रेम वियोग, निश दिन राम राम की वर्षा भय रुज नहीं दुख सोग, जहां शनक से मीन हंस शिव मुनि जन नख रवि प्रभाव का प्रकाश, प्रफुल्लित कमल निमिष नहीं सास डर गुंजत निगम सुबास, जय सर सुभग मुक्ति मुक्ता फल सुकृत अमृत रस पी जय, सो सर छाड़ कुबुद्धि विहंगम यहाँ कहाँ रह की जय। पर एक व्यक्तिवादी सगुणोपासक कवि की उक्ति होने के कारण इस चित्र में वह रहस्यमय अव्यक्तता या धुंधलापन नहीं है। कवि अपनी भावना को स्पष्ट और अधिक व्यक्त करने के लिए जगह जगह आकुल दिखाई पड़ता है। इसी से अन्योक्ति का मार्ग छोड़ जगह जगह उसने रूपक का आश्रय लिया है। इसी अन्योक्ति का दीनदयाल गिरिजी ने अच्छा निर्वाह किया है। चल चकई वा सर विषय जहां नहीं रैन बिछोह, रहत एक रस दिवस ही सुहृद हंस संदोह, सुहृद हंस संदोह कोह अरुद्रोह न जाके, भोगत सुख अबोह मोह दुख मोहय न ताके, बरने दीन दयाल भाग्य बिनु जाय न सकई, पिय मिलाप नित रहे ताहि सर चल तू चकई। इसी अन्योक्ति पद्धति को कविन्द्र रविन्द्र ने आजकल अपने विस्तृत प्रकृति निरीक्षण के बल से और अधिक पल्लवित करके जो पूर्ण और भव्य स्वरूप प्रदान किया है, वह हमारे नवीन हिंदी साहित्य क्षेत्र में गांव में नया नया आया ऊंट हो रहा है। बहुत से नवयुवकों को अपना एक नया ऊंट छोड़ने का हौसला हो गया है। जैसे भाव तथा तथ्यों की व्यंजना के लिए श्रीयुक्त रविन्द्र प्रकृति की क्रीड़ा स्थल से लेकर नाना मूर्त स्वरूप खड़ा करते हैं, वैसे भावों को ग्रहण करने तक ही की क्षमता न रखने वाले बहुतेरे उत्पटांग चित्र खड़ा करने और कुछ असंबद्ध प्रलाप करने को ही छायावाद की कविता समझ अपने भी कुछ करामात दिखाने के फेर में पड़ गए हैं। चित्र के द्वारा बात कहना बहुत ठीक है, पर कहने के लिए कोई बात भी तो हो। कुछ तो काव्य रीति से सर्वथान विज्ञ छंद अलंकार आदि के ज्ञान से बिल्कुल कोरे देखे जाते हैं। बड़ी भारी बुराई यह है कि अपने को एक नए संप्रदाय में समझ अहंकार वश में कुछ सीखने का कभी नाम भी नहीं लेना चाहते और अपनी अनभिज्ञता को एक चलते नाम की ओट में छिपाना चाहते। मैंने कई एक से उन्हीं की रचना लेकर कुछ प्रश्न किए, पर उनका मानसिक विकास बहुत साधारण कोटि का कोई गंभीर तत्व ग्रहण करके अनुपयुक्त पाया। ऐसों के द्वारा काव्य क्षेत्र में भी राजनीतिक क्षेत्र के समान पाखंड के प्रचार की आशंका है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि रहस्यवाद का प्रकृत स्वरूप और उसका इतिहास आदि साहित्य सेवियों के सामने रखा जाए तथा पुराने और नए रहस्यवादी कवियों की रचनाओं की सूक्ष्म परीक्षा द्वारा रहस्यवाद की कविता के साहित्यिक स्वरूप की मीमांसा की जाए। इस विषय पर अपने विचार मैं किसी दूसरे समय प्रकट करूंगा, इस समय जो इतना कह गया उसी के लिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ तक तो सूर्य की सहृदयता की बात हुई, अब उनकी साहित्यिक निपुणता के संबंध में भी दो चार बातें कहना आवश्यक है। किसी कवि की रचना के विचार के सुभीते के लिए हम दो पक्ष कर सकते हैं, हृदय पक्ष और कला पक्ष। हृदय पक्ष का कुछ दिग्दर्शन हो चुका, अब सूर्य की कला निपुणता के काव्य के बाह्यांग के संबंध में यह समझ रखना चाहिए कि वह भी उनमें पूर्ण रूप से वर्तमान है। यद्यपि काव्य में हृदय पक्ष ही प्रधान है, पर बहिरंग भी कम आवश्यक नहीं। रीति, अलंकार, छंद ये सब बहिरंग विधान के अंतर्गत हैं, जिनके द्वारा काव्यात्मा की अभिव्यक्ति में सहायता पहुँचती है। सूर, तुलसी, बिहारी आदि कवियों में दोनों पक्ष प्रायः सम है। जायसी में हृदय पक्ष की प्रधानता है। कला पक्ष में कोष्टक में अलंकारों का बहुत कुछ व्यवहार होते हुए भी कोष्टक बंद त्रुटि और न्यूनता है। केशव में कला पक्ष ही प्रधान है, हृदय पक्ष न्यून है। यह तो आरंभ में ही कहा जा चुका है कि सूर की रचना जयदेव और विद्यापति के गीत काव्यों की शैली पर है। इसमें सूर और लय के सौंदर्य और माधुर्य का भी रस परिपाक में बहुत कुछ योग रहता है। सूरदास में कोई राग या रागिनी छूटी न होगी, इससे यह संगीत प्रेमियों के लिए ही बड़ा भारी खजाना है। नाथ सौंदर्य के साधनों में अनुप्रास आदि शब्दालंकार भी है। संस्कृत के गीत गोविंद में कोमलकांत पदावली और अनुप्रास की ओर बहुत कुछ ध्यान है। विद्यापति की रचना में कोमल पदावली का आग्रह तो है, पर अनुप्रास का उतना नहीं। सूर में चलती भाषा की कोमलता है, वृत्ति विधान और अनुप्रास की ओर झुकाव कम है। इससे भाषा की स्वाभाविकता में बाधा नहीं पड़ने पाई। भावुक सूर ने अपना शब्द शोधन दूसरी ओर दिखाया है। उन्होंने चलते हुए वाक्यों, मुहावरों और कहीं कहीं तो कहावतों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर की भाषा बहुत चलती हुई और स्वाभाविक है। काव्य भाषा होने से यद्यपि उसमें कहीं कहीं संस्कृत के पद कवि के समय के पूर्व के परंपरागत प्रयोग तथा ब्रज से दूर दूर के प्रदेश के शब्द भी आ मिले हैं, पर उनकी मात्रा इतनी नहीं है कि भाषा के स्वरूप में कुछ अंतर पड़े या कृत्रिमता आए। श्लेष और यमककूट पदों में भी अधिकतर पाए जाते हैं। अर्थालंकारों की अलबत्ता पूर्ण प्रचुरता है, विशेषत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि सादृश्य मूलक अलंकारों की। यद्यपि उपमान अधिकतर साहित्य प्रसिद्ध और परंपरागत ही हैं, पर स्वकल्पित नए नए उपमानों की भी कमी नहीं है। कहीं कहीं तो जो प्रसिद्ध उपमान भी लिए गए हैं, वे प्रसंग के बीच बड़ी ही अनूठी उद्भावना के साथ बैठाए गए हैं। स्फटिक के आंगन में बालक कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके हाथ पैर का प्रतिबिंब पड़ता चलता है। इस पर कवि की उत्प्रेक्षा देखिए। फटिक भूमि पर करपग छाया, यह शोभा अति राजती, करिकरी प्रति दस पद प्रति मने, वसुधा कमल बैठ की साजती। रूपी अंगों की शोभा के वर्णन में उपमा उत्प्रेक्षा की भरमार बराबर मिलेगी। इनमें बहुत सी पुरानी और बधी हुई और कुछ नवीन भी है। उपमा उत्प्रेक्षा की सबसे अधिकता हरिजू की बाल छवि के वर्णन में पाई जाती है। यों तो जहाँ जहाँ रूप वर्णन है सर्वत्र ये अलंकार भरे पड़े हैं। उपमान सब तरह के हैं, पृथ्वी पर के भी और पृथ्वी के बाहर के भी, सामान्य प्राकृतिक व्यापार भी और पौराणिक प्रसंग भी। पिछले प्रकार के उपमानों के उदाहरण इस प्रकार हैं। क, नील श्वेत पर पीत लाल, मणि लटकन माल रुराई, सुन गुरु असुर देव गुरु मिली, मानो भौम सहित समुदायी। ख, हरिकर राजत माखन रोटी, मनो बराह भूधर स पृथ्वी, धरी दर्शन की कोटि। अंग, शोभा और वेशभूषा आदि के वर्णन में सूर को उपमा देने की झक सी चढ़ी थी, और वे उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा करते चले जाते हैं। इस झक में कभी कभी परिमिति या मर्यादा का विचार नहीं रह जाता। ऐसे ऊपर के उदाहरण ख में, जहाँ मक्खन लगी हुई छोटी सी रोटी और कहाँ गोल पृथ्वी, जहाँ ईश्वरत्व या देवत्व की भावना से किसी छोटे व्यापार द्वारा अत्यंत वृहद व्यापार के संकोच मात्र किया गया है, वहाँ ऐसी बात कटकती है। जैसे इस पद में, मथत दधि मथनी टेकी रहियो, आर करत मटकी गही मोहन बासु की शंभु डरियो, मंदर डरत सिंध पुनि कापत, फिर जनि मथन करय, पलय होए जनि गहे मथानी प्रभु मर्याद टरै। पर उक्त दोनों उदाहरणों के संबंध में तो इतना बिना कहे नहीं रहा जाता कि ऐसे उपमान बहुत काव्य उपयोगी नहीं जचते। काव्य में ऐसे ही उपमान अच्छी सहायता पहुंचाते हैं जो सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप में परिचित होते हैं और उनकी भव्यता विशालता या रमणीयता आदि का संस्कार जनसाधारण के हृदय पर पहले से जमा चला आता है। न शनि या कोयले सा कालापन ही किसी ने आंखों देखा है, न वराह भगवान का दांत की नोक पर पृथ्वी उठाना। यह बात दूसरी है कि केशव जैसे कुछ प्रसिद्ध कवियों ने भी भानु मनो शनि अंक लिए ऐसी प्रेक्षा की ओर रुचि दिखाई है। हमारे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि ज्ञान विज्ञान के प्रसार से जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहत से बृहत क्षेत्र मनुष्य के लिए खुलते जाते हैं, उनके भीतर की नाना रमणीय और अद्भुत रूपों और व्यापारों का जो सर्वसाधारण को प्रत्यक्ष नहीं है, काव्य में उपयोग करके उसके क्षेत्र का विस्तार न किया जाए, उनका प्रयोग किया जाए, कवि की प्रतिभा द्वारा वे गोचर रूप में सामने लाए जाएं, पर दूसरे प्रकार की रचनाओं में लाए जाएं केवल अंग आभूषण आदि की उपमा के लिए नहीं। ज्योतिर्विज्ञान द्वारा खगोल के बीच न जाने कितने चक्कर खाते बनते बिगड़ते रंग बिरंग पिंडों अपार ज्योति समूह आदि का पता लगा है जिनके सामने पृथ्वी किसी गिनती में नहीं। कोई विश्वव्यापनी ज्ञान दृष्टि वाला कवि यदि विश्व की कोई गंभीर समस्या लेकर उसे काव्य रूप में रखना चाहता है तो वह इन सबको हस्तामलक बनाकर सामने ला सकता है। सूरदास जी में जितनी सहृदयता और भावुकता है प्रायः उतनी ही चतुरता और वाग विदग्धता वीट भी है। किसी बात को कहने के न जाने कितने टेढ़े मेढ़े ढंग उन्हें मालूम थे। गोपियों के वचन में कितनी विदग्धता और वक्रता भरी है। वचन रचना की उस वक्रता के संबंध में आगे विचार किया जाएगा। यहाँ पर हम वैदग्ध के उस उपयोग का उल्लेख करना चाहते हैं जो आलंकारिक कुतूहल उत्पन्न करने के लिए किया गया है। साहित्य प्रसिद्ध उपमानों को लेकर सूर्य ने बड़ी बड़ी क्रीड़ाएँ की हैं। कहीं उनको लेकर रूपकातिशयोक्ति द्वारा अद्भुत एक अनुपम बाग लगाया है, कहीं जब जैसा जी चाहा है उन्हें संगत सिद्ध करके दिखाया है, कहीं असंगत गोपियां वियोग में कूड़ कर एक स्थान पर कृष्ण के अंगों के उपमानों को लेकर उपमा को इस प्रकार न्याय संगत ठहराती हैं। उधो अब यह समुझ भई नंद नंदन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय दई, कुंतल कुटिल भंवर भरी भांवरी मालती भुरै लई, तजत न गहरु कियो कपटी जब जाने निरस गई, आनन इंदु बरन सम्मुख तजी करखे तेन नई, फिर मोहि नहीं नेह कुमुदनी अंत ही हे महई, न घन श्याम से निसि बासर रति रसना छिजई, सूर विवेक हीन चातक मुख मूद तौ न सई। इस प्रकार दूसरे स्थान पर भी अपने नेत्र के उपमानों को अनुपयुक्त ठहराते हैं। उपमा एक न नयन गही कविजन कहत कहत चली आए, सुधि करी करी काहुन कही कह चकोर मुख विधु बिनु जीवन भवरन तण उड़ी जात, हरिमुख कमल कोष बिछरेते ठाले क्यों ठहरात, खंजन मनोरंजन जौप जन जौप कबहु नाहि सतरात, पंक पसारी न उड़त मंद हुए समर समीप बकात, आए बधन ब्याघ वय उधव जो मृग क्यों न पलाय, देखत भाग्य वसय घन वन में जह को संग न धाय, रज लोचन बिनु लोचन कैसे प्रतिछिन अति दुख बाढ़त, सूर्यदास मिनता कछु के जल भरी संग न छाड़त। दोनों उदाहरणों में उपमानों की उपयुक्तता और अनुपयुक्तता का जो आरोपण किया गया है वह हृदय के क्षोभ से उत्पन्न है, इसी से उसमें सरसता है, काव्य की योग्यता है। यदि कोई कठहुज्जति इन्हें उपमानों को लेकर कहने लगे वाह नेत्र भ्रमर कैसे हो सकते हैं, भ्रमर होते तो उड़ न जाते, मृग कैसे हो सकते हैं, मृग होते तो जमीन पर चौकड़ी न भरते, तो उनके उसके कथन में कुछ भी काव्यत्व न होगा। उपमानों की आनंद दशा का वर्णन करके इसी प्रकार सूर्य ने अप्रस्तुत प्रशंसा द्वारा आराधा के अंगों और चेष्टाओं का विरह से द्वितिहीन और मंद होना व्यंजित किया है। तब ते इन सबहिन सचुपायो जब ते हरि संदेश तिहारो सुनत तांवरो आयो, फूले ब्याल दुरेते प्रगटे पवन पेट भरि खायो, ऊँचे बैठि विहंग सभा विच कोकिल मंगल गायो, निकसिकंदरा ते के हरि माथे पूछ हिलायो। वन गृह में गजराज निकस कै अंग अंग गर्व जनायो। चेष्टाओं और अंगों का मंद और श्रीहीन होना कारण है और उपमानों का आनंदित होना कार्य है। यहाँ अप्रस्तुत कार्य के वर्णन द्वारा प्रस्तुत कारण की वंदना की गई है। उषा में तुलसीदास ने जानकी के न रहने पर उपमानों का प्रसन्न होना राम के मुख से कहलाया है। कुंद कली दाड़िम दामिनी कमल शरद शशि अहि भामिनी श्रीफल कनक कदली हर्षाही नेकुन शंक सकुच मन माही सुनो जानकी तुहि बिन आजू हर्षे सकल पाए जनु राजू। पर जहाँ उपमानों के आनंद से केवल सीता के न रहने की वंदना होती है, सूर्य की अप्रस्तुत प्रशंसा में उक्ति का चमत्कार भी कुछ विशेष है और रसात्मकता भी। दूर की सूजिया उहा वाले चमत्कार प्रधान पद भी सूर्य ने बहुत से कहे हैं। जैसे क दूर करहो बीना कर धरिबो मोहे मृग नाही रथ हक्यो नाहीन होत चंद को ढरिबो। ख मन राखन को बिनु लियो कर मृग थाके उडुपति न चरे अति आतुर हुए सिंह लिख्यो कर जे ही भामनी करुण टरय। राधा का मन बहलाने के लिए कैसे प्रकार रात बिताने के लिए वीड़ा लेकर बैठी। उस वीड़ा या वेणु के स्वर से मोहित होकर चंद्रमा के रथ का हिरण अड़ गया और चंद्रमा के रुक जाने से रात और भी बढ़ गई। इस पर घबरा कर वे सिंह का चित्र बनाने लगे जिससे मृग डर कर भाग गया। तुलसी की पद्मावत में भी यह उक्ति ज्यों की त्यों आई है। गहे बिन मूक रैन बिहाई शशिष बाहन तह रहे ओनाई पुण्य धन सिंह उरे है लाग ऐसे थे बिथा रैन सब जाग। जैसी के पद्मावत विक्रम संवत 1597 में बनी और सुरसागर संवत 1607 के लगभग बन चुका था। अतः जैसी की रचना कुछ पूर्व की ही मानी जाएगी। पूर्व की न सही तो भी एक दूसरे से यह उक्ति ली हो इसकी संभावना नहीं। उक्ति सूर और जायसी दोनों से पुरानी है। दोनों ने स्वतंत्र रूप से इसे कवि परंपरा द्वारा प्राप्त किया। कहीं कहीं सूर ने कल्पना को अधिक बढ़ाकर या यूँ कहिए कि उहा का सहारा लेकर जैसे पीछे बिहारी ने बहुत किया वर्णन कुछ अस्वाभाविक कर दिया है। चंद्र की दाहकता से चिड़कर गोपी राधा से कहती है कर धनु लय कीन चंद हिमारी तू हरुबाय जाए मंदिर चढ़ी सखी सम्मुख दर्पण विस्तारी या ही भांति बुलाय मुकुर मही अति खल बल खंड खंड करि डारी। गोपियों का विरोहन माद कितना ही बड़ा हो पर उनकी बुद्धि बिल्कुल बच्चों की सी दिखलाना स्वाभाविक नहीं जस्ता। कविता में सूर की सूज या चमत्कार ही सब कुछ नहीं। पावस के घन गर्जन आदि योगिनी को संतापदायक होते हैं। यह तो एक बधी चली आती हुई बात है। सूर ने एक प्रसंग कल्पित करके इस बात को ऐसी युक्ति से रख दिया है कि इसमें एक अनूठापन आ गया है। वह कहते हैं कि पावस आने पर सखियां राधा को मालूम ही नहीं होने देती कि पावस आया है। वे और बातें बताकर उन्हें बहकाती रहती हैं। बात बुझत हो बहरावती सुनहु श्याम वै सखी सयानी पावस ऋतु राधे ने सुनावती घन गर्जत तो कहत कुशलमति गूंजत गुहा सिंह समझावती नहीं दामिनी द्रुम दवा शैल चढ़ी फिर बयार उलट भर झर लावती नाहिन मोर बकत पिकुदादुर ग्वाल मंडिन खगन खिलावती। सूर को वचन रचना की चतुराई और शब्दों के कीड़ा का भी पूरा शौक था। बीच बीच में आए हुए कूट पद इस बात के प्रमाण है, जिनमें या तो अनेकार्थवाची शब्दों को लेकर या किसी एक वस्तु को सूचित करने के लिए अनेक शब्दों की लंबी कड़ी जोड़कर खिलवाड़ किया गया है। सूर्य की प्रकृति कुछ क्रीड़ाशील थी। उन्हें कुछ खेल तमाशे का भी शौक था। लीला पुरुषोत्तम के उपासक कवि में यह विशेषता होनी ही चाहिए। तुलसी के गंभीर मानस में इस प्रवृत्ति का आभास नहीं मिलता। अपनी इस शब्द कौशल की प्रवृत्ति के कारण सूर ने व्यवहार के कुछ पारिभाषिक शब्दों को लेकर भी एक आध जगह उक्तियां बांधी है। जैसे सोचो सो लिखवार कहावय काया ग्राम मसाहत करी कै जमा बांध ठन रामय मनमत करे कैद अपनी में जान जहतिया लावय। काव्य में इस प्रकार की उक्तियां ठीक नहीं होती। आचार्यों ने अपितत्व दोष के अंतर्गत इस बात का संकेत किया है। सूर भी एक ही आध जगह ऐसी उक्तियां लाए हैं पर वे प्रेम फौजदारी ऐसी पुस्तकों के लिए नमूने का काम दे गई है। यहाँ तक तो सूरदास जी की कुछ विशेषताओं का अनुसंधान हुआ, अब उनकी पूर्ण रचना के संबंध में कुछ सामान्य मत स्थिर करना चाहिए। पहले तो यह समझ रखना चाहिए कि सुर सागर वास्तव में एक महासागर है, इसमें हर प्रकार का जल आकर मिलता है। जिस प्रकार उसमें मधुर अमृत है, उसी प्रकार कुछ खारा फीका और साधारण जल भी। खारे फीके और साधारण जल से अमृत को अलग करने में विवेचकों को प्रवृत्त रहना चाहिए। सुरसागर में बहुत से पद बिल्कुल साधारण श्रेणी के मिलेंगे, एक ही पद में भी कुछ चरण तो अनूठे और अद्वितीय मिलेंगे और कुछ साधारण और कभी कभी तो भर्ती के। कई जगह वाक्य रचना अव्यवस्थित मिलेगी और छंद या तो कांत में खपाने के लिए शब्द भी बहुत कुछ विकृत किए हुए तोड़े मरोड़े हुए पाए जाएंगे, जैसे रहत के लिए राहत, जीते के लिए जीतीत, पानी के लिए पान्य इत्यादि। व्याकरण के लिए लिंग आदि का विपर्य या अनियम भी कहीं कहीं मिल जाता है, जैसे शूल शब्द कहीं पुल्लिंग आया है कहीं स्त्रीलिंग। सारांश यह कि यदि हम भाषा पर सामान्यतः विचार करें तो वह सर्वत्र तुलसी की सी गठी हुई सुव्यवस्थित और अपरिवर्तनीय न मिलेगी। कहीं कहीं किसी वाक्य या किसी चरण तक को हम बदल दें तो कोई हानि न होगी। किसी किसी पद में कुछ वाक्य कुछ विशेष अर्थ शक्ति नहीं रखते, चरण की पूर्ति करने का ही नाम काम देते जान पड़ते हैं। बात यह है कि नित्य कुछ न कुछ पद बनाना उनका नियम था। उन्होंने कुछ पद अधिक पद कहे हैं, फुटकर पद कहते चले गए हैं, इससे एक ही भाव वाले बहुत से पद भी आ गए हैं और कहीं कहीं भाषा भी शिथिल हो गई है। अंधे होने के कारण लिखे पदों को सामने रखकर काटने छाटने या हड़ताल लगाने का उन्हें वैसा मौका न था जैसा तुलसी को। उपासना पद्धति के भेद के कारण सूर और तुलसी की रचना में जो भेद कहा जाता है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तुलसी की उपासना सभ्य सेवक भाव से कही जाती है और सूर की सख्य भाव से। यहाँ तक कि भक्तों में सूरदास जी श्री कृष्ण के सखा उद्धव के अवतार कहे जाते हैं। यहाँ पर हमें केवल यह देखना है कि इस उपासना भेद का सूर की रचना के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ा है। यदि विचार करके देखा जाए तो सूर में जो कुछ संकोच या अभाव या प्रगल्भता पाई जाती है वह गृहित विषय के कारण। इन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार ही वर्णन के लिए चुने। जिसे बाल क्रीड़ा और श्रृंगार क्रीड़ा का अत्यंत विस्तृत वर्णन करना है वह यदि संकोच भाव छोड़ लड़कों को नटखटी यौवन सुलभ हास प्रयास आदि का वर्णन न करेगा तो काम कैसे चलेगा। कालिदास ने भी कुमार संभव में पार्वती के अंग प्रत्यंग का श्रृंगारी वर्णन किया है, तो क्या उनकी शंकर की उपासना भी सख्य भाव की हुई और उनका यह वर्णन उसी सख्य भाव के कारण हुआ। थोड़ा सा ध्यान देने से यह जाना जा सकता है कि आरंभ में सूर ने जो बहुत दूर तक विनय के पद कहे हैं वे दीन सेवक या दास के रूप में ही कहे हैं। मिलान करने पर सूर की विनयावली और तुलसी की विनय पत्रिका में सखा और सेवा का कोई भेद न पाया जाएगा। विनय में सूर भी ऐसा ही कहते पाए जाएंगे, प्रभु हो सब पतितन के टीको। यों तो तुलसी भी प्रेम भाव में मग्न हो सामिप्य और घनिष्ठता अनुभव करते हुए पुतरा बांधने के लिए तैयार होकर आए हैं और शबरी आदि को तारने पर कहते हैं, तारे हों का रही सगाई। इसी सांप्रदायिक प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ महानुभावों ने सूर और तुलसी में प्राकृतिक भेद बताने का प्रयत्न किया और सूर को खरा तथा स्पष्टवादी और तुलसी को सिफारिशी खुशामदी या लप्पो चप्पो करने वाला कहा है। उनकी राय में तुलसी कभी राम की निंदा नहीं करते पर सूर ने दो चार स्थानों पर कृष्ण के कामों की निंदा भी की है, जैसे कह, तुम जानत राधा है छोटी, हमसो सदा दुरावती है यह, बात कहे मुख छोटी कोटी, नंदनंदन याहि के वश है, विवश दे की बेदी छवि छोटी, सूर्यदास प्रभु वह अति खोटे, यह उनहुते अति ही खोटी। सखीरी श्याम कहाँ हित जाने, सूर्यदास सर्वस जो दीजय कारो कृतहीन माने। पर यह कथन कहाँ तक ठीक है, इसका निर्णय इस प्रश्न के उत्तर द्वारा झटपट हो सकता है। सूर्यदास प्रभु वह अति खोटे कारो कृतहीन माने, इन दोनों वाक्यों में वाच्यार्थ के अतिरिक्त संलक्ष्य असंलक्ष्य किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ भी है या नहीं। यदि किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं है तो उक्त कथन ठीक हो सकता है, पर किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ न होने पर यह दोनों वाक्य रसात्मक न होंगे, इनमें कुछ भी काव्यत्व न होगा। पर हमारे देखने में ये दोनों वाक्य और संलक्ष्य क्रम व्यंग के कारण रसात्मक हैं। इन दोनों पदों पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोड़ा सा भी ध्यान देगा वह जान लेगा कि कृष्ण न तो वास्तव में खोटे कहे गए हैं न उल्टे कृतघ्न। प्रथम पद में जो सखी की उक्ति है वह विनोद या परिहास की उक्ति है, सरासर गाली नहीं है। सखी का यह विनोद हर्ष का ही एक स्वरूप है और संचारिक रूप में यह प्रिय सखी राधा के प्रति रतिभाव की व्यंजना करता है। इससे सखी के उस आनंद का पता चलता है जो राधा कृष्ण के परस्पर प्रेम को देख उसे हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा पद विरहाकुल गोपी का वचन है जिससे कुछ विरोद मिश्रित हमर्ष व्यंजित होता है। यह हमर्ष भी यहाँ रतिभाव का व्यंजक है, इसके कहने की आवश्यकता नहीं। यह आरंभ में ही कहा जा चुका है कि कृष्ण और गोपियों का प्रेम लोक मर्यादा से परे जीवनोत्सव या क्रीड़ा के रूप में सामने रखा गया है। इस संबंध में हमारा केवल यही निवेदन है कि सांप्रदायिक परिभाषाओं के चक्कर में साहित्यिक दृष्टि खो न देनी चाहिए। तुलसी पर इल्जाम जिसे सुर भरी किए गए हैं यह है कि वे रह रहकर फिजूल याद दिलाया करते हैं कि राम परमेश्वर है। ठीक है, तुलसी ऐसा जरूर करते हैं, पर कहाँ? रामचरितमानस में। पर रामचरितमानस तुलसीदास का एकमात्र ग्रंथ नहीं है, इसके अतिरिक्त तुलसीदास जी के और भी कई ग्रंथ हैं, पर सब में यही बात पाई जाती है। यदि नहीं तो इसका विवेचन करना चाहिए कि रामचरितमानस में ही यह बात क्यों है। मेरी समझ में इसके कारण ये है। पहला, रामचरितमानस की कथा के वक्ता तीन हैं, शिव, याज्ञवल्क और काकभूषण जी। श्रोता हैं पार्वती, भरद्वाज और गरुण। इन दोनों श्रोताओं ने अपना यह मोह प्रकट किया है कि कहीं राम मनुष्य तो नहीं है। तीनों वक्ता जो कथा कह रहे हैं वह इसी मोह को छुड़ाने के लिए इसलिए कथा के बीच बीच में याद दिलाते जाना बहुत उचित है। गोस्वामी जी ने भूमिका में इस बात को स्पष्ट करके शंका की जगह नहीं छोड़ी। दूसरा, रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है जिसमें कथा का प्रवाह अनेक घटनाओं को लेता हुआ लगातार चलता है। इस दशा में कथा प्रवाह में मग्न पाठक या श्रोता को असल बात की ओर ध्यान दिलाते हैं। कहने की आवश्यकता समय समय पर उस कवि को अवश्य मालूम होगी जो नायक को ईश्वर अवतार के रूप में दिखाना चाहता है। फुटकर पद्यों में इसकी आवश्यकता न प्रतीत होगी। सुरसागर की शैली पर तुलसी की गीतावली है, उसमें यह बात नहीं पाई जाती, जबकि समान शैली की रचना मिलती है तब मिलान के लिए उसी को लेना चाहिए। तीसरा, श्री कृष्ण के लिए हरि, जनार्दन आदि विष्णुवाचक शब्द बराबर लाए जाते हैं, इससे चेतावनी की आवश्यकता नहीं रह जाती। गोपियों ने कृष्ण के लिए बराबर हरि का व्यवहार किया है। इस प्रसंग को छोड़ने के पहले इतना कह देना चाहता हूँ कि इस प्रकार तुलसी ने राम की सानिध्य प्राप्ति के कारण दशरथ, कौशल्या, कीवट, शबरी, जटायु आदि के भाग्य को शिव सनकादिक के भाग्य से भी बढ़ाकर कहा है। इसी प्रकार अनेक शब्दों में सूर ने भी जगह जगह नंद, यशोदा और गोपियों के भाग्य को सराहा है। यह भी याद दिलाना है कि कृष्ण परमेश्वर हैं।